हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुझे माफ करना रुद्र, लेकिन मैं इस तरह की जगह पर बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, शिविका ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं ऑफिस में रहकर काम निपटा लेती या अपने परिवार के साथ समय बिता लेती। चलो शिविका, छोड़ो ये सारी काम की बातें, अभी जिंदगी एंजॉय करना सीखो, रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर खींचते हुए कहा। ठीक है, चल रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा, लेकिन इसे जिंदगी एंजॉय करना तो नहीं कहते, डांस फ्लोर की ओर रुद्र का पीछा करते हुए शिविका बड़बड़ाती हुई गई। जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंची और उसने आसपास के कपल्स को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर हल्का फुल्का थिरकते हुए देखा, संगीत धीमा और प्रकाश मंद था। शिविका किनारे हटकर चुपचाप खड़ी हो गई। वो उन कपल्स को देख रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर एक टैप महसूस हुआ। रुद्र बाकी लोगों के साथ डांस कर रहा था, इसलिए वो एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने देखा कि पीछे उसका क्लाइंट मिस्टर साहिल मेहरा खड़ा है, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। मिस शिविका, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, मिस्टर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी अच्छा लगा मिस्टर साहिल, शिविका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साहिल ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा। शिविका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं थी, लेकिन शायद आप मुझसे मिलना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप इस पार्टी और इस शाम का एंजॉय कर रही हैं ना, मिस्टर साहिल ने कमरे को निहारते हुए कहा। सच कहूँ तो मैं यहाँ बहुत बोर हो गई हूँ, आपकी उम्मीद सही थी, मैं खुद से कभी यहाँ नहीं आती, मेरा ये बेवकूफ़ दोस्त मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया, शिविका ने रुद्र की ओर देखकर कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। शिविका की बात सुनकर कुछ देर से वहाँ खड़े रुद्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए साहिल ने कहा, अच्छा तो ये आपके दोस्त हैं, मिस्टर रुद्र ओबेरॉय, आपका ही तो ये होटल है ना। रुद्र ने साहिल से हाथ मिलाते हुए काफी अट्ठाणे से कहा, मुझे खुशी हुई, लेकिन माफ करना, मैंने आपका नाम नहीं सुना। रुद्र की सीधी बात पर साहिल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं शायद आपके जितना लोकप्रिय नहीं हूँ, अभी अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो साल में आप ही नहीं बाकी सब भी जान जाएंगे कौन है साहिल मेहरा। शिविका ने दोनों के बीच बढ़ती तनाव को देखकर बीच में आते हुए कहा, रिलैक्स गाइस, मैंने कहा कि मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, क्या तुम दोनों आपस में लड़कर मेरा मनोरंजन करोगे, और रुद्र, क्या तुम थोड़े शिष्ट नहीं हो सकते। क्या मैं वाकई असभ्य था, माफ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ, शिविका के बीच में आने पर रुद्र तुरंत माफी मांगने लगा। शिविका भी नहीं चाहती थी कि बात बढ़े और साहिल के साथ उसका पेशेवर रिश्ता खराब हो, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। साहिल की ओर देखते हुए बोली, मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटी सी बात को माफ करेंगे। साहिल ने खुद को महान दिखाने का नाटक करते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। इतना बोलते हुए उसने रुद्र की ओर एक तिरछी मुस्कान के साथ देखा। रुद्र को समझ आ गया कि वो उसे ही निशाना बना रहा है, लेकिन शिविका की वजह से वो चुप रहा। कुछ देर तक तीनों ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। फिर साहिल ने बात शुरू करते हुए कहा, वैसे आपने कहा कि आप यहाँ बोर हो रही थीं, क्या आप मुझे अपनी इस बोरिंग शाम को थोड़ा एंटरटेनिंग और रोमांचक बनाने का मौका देंगी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। साहिल की बात पर शिविका कन्फ्यूज होकर बोली, ऐसा क्या है जिसके बारे में आप इतने निश्चित हैं कि मुझे पसंद आएगा। साहिल ने बहुत विनम्रता से शिविका को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ के VIP सेक्शन में मेरे लिए खास डिनर अरेंज किया गया है, वहाँ आप अपना पसंदीदा संगीत भी चला सकती हैं, अगर आप चाहें तो डिनर में मेरे साथ जुड़ सकती हैं। साहिल के आमंत्रण पर शिविका थोड़ी सोच में पड़ गई और रुद्र की ओर देखा। रुद्र समझ गया कि वो साहिल का आमंत्रण स्वीकार करने वाली है, इसलिए वो इस तरह देख रही है। रुद्र बीच में बोल पड़ा, नहीं शिविका, तुम उसके साथ नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही साहिल बीच में बोल पड़ा, वो तो ठीक है, लेकिन आपके साथ आकर वो बोर हो रही थी और आपने उन पर ध्यान भी नहीं दिया, अगर आप चाहें तो आप भी डिनर में हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतने तनाव के बाद शिविका को साहिल की तरफ से इस तरह का अच्छा व्यवहार उम्मीद नहीं था। उसकी बात सुनकर वो उत्साहित होकर बोली, ओह ये बहुत अच्छा है, अब ठीक है ना रुद्र, चलो तुम भी साथ ही डिनर के लिए। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र थोड़ा गुस्से में आ गया। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों को पता है ना कि ये जगह मेरी है, मैं मालिक हूँ। मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, मैं तो हर जगह आ सकता हूँ। लेकिन शिविका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? शिविका थोड़ा किनारे हटकर उसे समझाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं तुम्हारी तरह असभ्य नहीं हूँ कि मना कर दूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। और साहिल वहाँ खड़ा था, दोनों की बातचीत और हरकतें गौर से देख रहा था। शिविका की बात पर रुद्र थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। ठीक है शिविका, अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ और इंजॉय करो, हम बाद में मिलते हैं, उसने उसे जल्दी से गले लगाते हुए कहा। शिविका ने मुस्कुराते हुए रुद्र को हल्का सा गले लगाया और फिर साहिल के साथ डिनर के लिए चली गई। रुद्र पता नहीं क्यों उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहता था। साहिल और शिविका ने भी उसे ज्यादा जोर नहीं दिया। साहिल ने कहा कि उसे बाकी मेहमानों को भी देखना है और कुछ VIP मेहमान भी हैं। दूसरी तरफ करण का घर। करण आज ऑफिस से बहुत देर से घर आया। वो इतना थका हुआ था कि अपने कमरे में भी नहीं गया और सोफे पर ही बैठ गया। उसने अपने जूते निकालकर किनारे रख दिए और सिर सोफे के सहारे टिकाकर आंखें बंद कर लीं। वो इस वक्त कुछ खास नहीं सोच रहा था, बस दिन भर की थकान उतारना चाहता था। आज ऑफिस में उसने बहुत काम किया था, इसलिए वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। इस समय तक समर भी घर आ जाता था, लेकिन वो नहीं दिख रहा था। करण को लगा कि समर उसके इंतजार में कमरे में होगा और डिनर से पहले पढ़ाई कर रहा होगा। उसने घर में किसी से समर के बारे में नहीं पूछा। वो अपनी सौतेली माँ और पिता से ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि बात बहस या झगड़े में बदल जाती थी। वो जरूरी बातें ही करता था और जब तक बहुत जरूरी ना हो सिर्फ समर से बात करता था। इतना सोचते हुए करण ने अपनी जगह से बैठे बैठे समर को आवाज लगाई, समर कहाँ है तू? आज आ साथ में खाना खाते हैं। करण ने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसकी आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ वहाँ आई और बोली, किसे आवाज लगा रहे हो करण? समर तो अब तक घर वापस नहीं आया है। पता नहीं कहाँ रहता है ये लड़का आजकल, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर करण चौंक गया। उसने उन्हें बताया, इतना देर से कभी नहीं करता है समर, और फोन तो उसके पास है ही नहीं। उसका फोन? उसकी सौतेली माँ ने पूछा, क्या हुआ उसके फोन को? करण सच बताने ही वाला था कि उसने बात बदलते हुए झूठ बोला, खराब हो गया है और उसने रिपेयर के लिए दिया है। समर की माँ परेशान होकर बोली, अच्छा देखो ये बात भी मुझे तुमसे पता चल रही है, उसने मुझे नहीं बताया। वैसे भी कुछ नहीं बताता है ये लड़का, आने दो, आज अच्छा खासा सुनाऊंगी मैं इसे। उनकी बात सुनकर करण ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं प्लीज रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि कहाँ रह गया वो। इतना बोलते हुए करण अपनी जगह से उठा और घर से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके पिता वहां आए और उन्होंने करण को बाहर जाते हुए देखा, लेकिन सीधे करण से कुछ नहीं पूछा और आकर अपनी पत्नी से बात करने लगे। दूसरी तरफ करण घर से बाहर आया, वो भी समर के घर वापस न आने को लेकर परेशान था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि किसको कॉल करे। अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए सोच ही रहा था कि उसे घर की ओर आता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। गौर से देखा तो वो समर था। करण को पहचान गया, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने समर को एक बड़ी ब्लैक लग्जरी कार से उतरते हुए देखा था। वो बहुत खुश लग रहा था और आराम से चलते हुए घर की ओर आ रहा था। जैसे ही उसने करण को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने पूछा, भाई आप यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था क्या मोबाइल फोन में? करण के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन देखकर समर ने पूछा। करण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने समर की ओर बहुत ही अजीब सवालिया निगाहों से देखा। क्रमशः